ओम शांति। सबसे पहली बात कि मुरली कैसे सुनना चाहिए, कौन बताएगा? मुरली हाँ कैसे सुनना चाहिए? योग युक्त होकर के और बाबा की याद में। तो बाबा की याद और योग युक्त अलग अलग है, एक ही बहुत। और कुछ, और कोई कैसे सुनना चाहिए बाबा की मुरली? हाँ जी बताइए। आत्म की स्थिति में, बहुत अच्छा। और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति अर्थात और कोई बाबा सुना रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वास्तव में मुरली कैसे सुनना चाहिए? जैसे कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा होती है ना, पहला अध्याय पूरा हो गया, दूसरा अध्याय पूरा हो गया, है ना, अध्याय पूरा हो जाता है लेकिन कुछ समझते नहीं है, है ना। ऐसे हम भी मुरली सुनते हैं शांति से नहीं। मुरली कैसे सुनना है? बाबा ने कहा है, बताया है कि मुरली सुनते समय उसको रियलाइज करते जाओ। रियलाइज अर्थात, रियलाइज अर्थात समझते जाओ या देखते जाओ, है ना, है ना। तो यदि साथ ही साथ हम देखते जाते हैं ना, तो मुरली भूलेगी नहीं, है ना। हमारे पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, मोबाइल है, पेन है, चश्मा है, कुछ भी रखते हैं, कहीं रखते हैं, तो रखते समय भी अगर हम देखते हुए रखते हैं ना कि हम यहां रख रहे हैं, देखते हुए रख रहे हैं और देख रहे हैं, तो बाय द वे आप कभी भूल भी जाते हैं ना, तो चूंकि आपने ध्यान से देखा है ना, तो ये याद आएगा कि हाँ मैंने टेबल पर रखा था, है ना। तो इसीलिए जब कोई भी कार्य करते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं ध्यान से करना, ध्यान से। तो इसीलिए जब कोई वस्तु रखते हैं या कोई चीज रखते हैं, तो उसको क्या करें, देखते हुए रखें। ऐसे नहीं हम लिख रहे हैं इधर, चश्मा रख दिया इधर। तो इसीलिए देखने की आदत डालें किसी भी चीज को। कई लोग क्या होते हैं, देखते हैं ना, लग रहा है कि हाँ देख रहे हैं, लेकिन शून्य जैसी अवस्था हो जाती है उनकी। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई सुन भी रहे हो, है ना, उसको जगाते हैं ना, जगा हुआ लेकिन बताना पड़ता है, क्यों, सामने है लेकिन खोया हुआ कहीं और है। इसलिए क्या करते हैं, उसको पहले जगाते हैं, भले जगा हुआ लेकिन फिर से जगाते हैं कि मैंने क्या कहा, सुना अपने ध्यान से, है ना। तो इसीलिए जब कोई भी महावाक्य ना हम सुनते हैं, तो क्या करें, उसको हम क्या करें, केवल सुने नहीं, क्या करें, देखें, है ना। जैसे बाबा ने आज कहा मुरली में, क्या कहा, कि इस दुनिया का क्या है, अभी अंत है। तो दुनिया का अंत है, तो जब दुनिया का अंत होगा तो कैसी होगी दुनिया, सामने दिखता है वो दुनिया कैसी होगी, कि केवल दुनिया का अंत है, दुनिया का अंत है, बस आगे बढ़ गए, नहीं, दुनिया का अंत है तो वो अंत की दुनिया कैसी है वो सामने दिखाई दे रही है, है ना। तो जो ही बाबा कहते हैं ना कि इस पुरानी दुनिया का अब अंत का समय है, तो अंत दिखाई दे, कैसा है अंत, पुरानी दुनिया कैसी होगी, और अंत का भी अंत है, अभी तो ये मुरली चले भी कितने दिन हो गई ना, तो अंत कैसा होगा। मान लो अर्थ को एक आ गया है तो क्या होगा, जगह जगह जमीन फट चुकी होगी, रोडें फट चुकी होंगी, रेलवे लाइन नहीं होंगी, आप रेलवे इंजन जितने भी दिख रहे हैं कहीं गिरे पड़े होंगे, मकान गिरे हुए होंगे सब जगह, बिजली फेल हो चुकी होगी, है ना। कहते हैं ना जो बिजली चमकती है ना, जो आकाशीय बिजली, तो क्या करेगी लास्ट में, ये जो बिजली है ना इसको फेल कर देगी, ये बिजली फेल हो जाएगी। तो अंत कैसा होगा, अंत की दुनिया दिख रही है सामने, तो ये दिखाई दे। इसीलिए जब हम मुरली सुन लेते हैं ना, तो बैठ करके फिर हम उसको देखें, मुरली के समय भी देखना है, लेकिन बाद में आराम से बैठ के फिर रिवाइज करें, उसको देखें कि पुरानी दुनिया कैसी होगी। सब विनाश हो चुका है, अर्थक्वेक से, सुनामी से, तूफान से, बाकी रही सही कसर भारत के लिए। क्या कहते हैं बाबा, खूनी ना है खेल, है ना, कोई मारना चाहेगा किसी को और मरेगा कोई, क्या हालत होगी, है ना। तो इसे देखना, जब कहते हैं ना पुरानी दुनिया का अंत है, तो अंत कैसा है देखना है दुनिया को। सामने दिख रहा है, तो ऐसे जब देखेंगे ना तो मुरली आपको याद रहेगी। बाबा ने कहा सोमनाथ, तो सोमनाथ दिखाई दे सामने, सोमनाथ का मंदिर कैसे है, भक्त कैसे आते हैं। तो जो भी बाबा कह रहे ना वो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे। और इसीलिए बाबा कहते हैं योग लगाना केवल बड़ी बात नहीं है, योग तो कोई भी लगाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब और जिस समय और जितना देर तक स्थित रहना चाहे, अब बहुत बिजी हैं सेवाओं में या कहीं भी, और कोई कहे आप एक सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, स्थित हो पाएंगे। ये प्रैक्टिस चाहिए, बाबा ये चाहते हैं। तो इसीलिए जब मुरली भी चलती है ना, तो मुरली जो ही बाबा कहते हैं ना उसको देखते हुए जाए, है ना। जैसे बाबा ने कहा सोमनाथ, सोमनाथ के बारे में बाबा ने कहा और बाबा आगे चले गए, और हम कहां रहे, सोमनाथ में, अच्छी तरह से देखें उसको, सही है ना। सही नहीं है। बाबा आगे सुनाते रहे और हम अभी सोमनाथ में रहे। क्या करना है, साथ साथ बाबा के, है ना। तो ये हमारी कमांडिंग जैसे आ जाएगा, कमांड में, है ना, कि हम तो बाबा जो ही कह रहे ना उसे हमने देखा, और जो ही बाबा ने कोई दूसरे पॉइंट कहा उसको फिर हम देखे, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया का अंत है, तो पुरानी दुनिया का अंत दिखाई दे। सबसे पहली चीज तो बिजली ही नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो क्या क्या नहीं होगा, अर्थक्वेक हो चुका होगा, सुनामी हो चुकी होगी, लोगों के रिलेशन कैसे होंगे, कोई हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, कोई पुलिस आदि, कोई कुछ भी नहीं होगी, अपराधियों का राज्य हो जाएगा जैसे, तो पुरानी दुनिया कैसी होगी, इसका अंत कैसा होगा, ये सामने दिखाई दे। फिर बाबा ने क्या कहा, इसी संगम युग पर तुम्हें क्या बनना है, भविष्य राजाई के लायक, है ना, भविष्य राजाई के लायक, पहले बनना है फिर राजा बनना है, है ना। ऐसा नहीं तालिबानियों जैसा पहले कब्जा कर लो फिर राजा बनो, नहीं, यहां कैसा है, बाबा कहते हैं यहां पहले लायक बनो, है ना, पहले लायक बनो फिर। तो संगम युग पर ही हमें क्या बनना है, राजाई के लायक बनना है, भविष्य राजाई। भविष्य राजाई कैसी होगी, राजा बनना सहज है, मुश्किल है, यहां मुश्किल है, सतयुग में क्या है, मुश्किल होगा क्या? कोई अपराधी आदि नहीं होंगे, कोई राज्य की सीमा नहीं होगी, कोई आपको गुप्तचर नहीं रखने हैं, जासूस नहीं रखने हैं। द्वापर कलयुग में तो राजा भी बनेंगे तो क्या करेंगे, कोई दूसरे राजा ने हमला तो नहीं कर दिया, राज्य में कोई बगावत तो नहीं हो रही है, प्रजा हमसे क्या चाहिए, बहुत चीजें क्या चाहिए, गुप्तचर चाहिए उसके लिए। तो द्वापर कलयुग की जो राजाई है, तो भविष्य जो सतयुग की राजाई है वहां क्या है, पांचों तत्व कैसे हैं, सो तो पता नहीं। और नेचर, आत्मा का नेचर भी कैसा है, सुखदाई है, तो ये हमें महसूस करना है कि अभी ये पुरानी दुनिया कैसी है जो अंत हुआ पड़ा है, और हमें भविष्य राजाई के लायक बनना है, तो कैसी होगी राजाई, वहां कैसा राजा होंगे वहां, वो संस्कार हमारे में अभी धारण करना है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, गद्दी नसीन कौन बन सकते हैं, ऑलराउंड सर्विस है ना, ऑलराउंड सर्विस अर्थात, ऑलराउंड सर्विस अर्थात सभी प्रकार की सेवा करना है ना, ऐसा नहीं एकदम टिप टॉप वाली सेवा हो तो हम करें, बाकी सेवा, तो हर प्रकार की सेवा है ना, जैसे बाबा थे, बाबा अपने हाथों से क्या करते थे, उपला बनाते थे, बल्कि मोटी मोटी जो सेवा है ना, इसमें और देह अभिमान टूटता है ना, अदरवाइज देह अभिमान बढ़ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, ऑलराउंड सेवा करना है, ऑलराउंड सेवा मीन्स मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म, कर्म से भी हमें क्या करना है, गुणदान, ऐसे कर्मों द्वारा ऐसा करना है कि जिसको देख के कोई सीखे, किसी को प्रेरणा मिले, तो कर्मों द्वारा गुणदान। और शक्ति किससे देना है, मनसा से, शक्ति का दान किसे करते हैं, मनसा से है ना। तो इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा, हर प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा है हमें क्या करना है, सुख देना है सबको है ना, जितना जितना हम दूसरों को सुख देंगे, जितना जितना हम दुआएं लेंगे, उतना हम बाबा और मम्मा का क्या कर सकेंगे, सो कर सकेंगे। बाबा ने कहा ना, क्या करना है तुम्हें, मम्मा बाबा का सो करना है। अब चलते हैं बहुत धैर्यवत चलते हैं, बोलते हैं बहुत धैर्यवत बोलते हैं, कोई भी कर्म करते हैं बहुत धैर्यवत धीरज से, हर एक को सुख देते हैं है ना। तो जब सुख देते हैं ना, किसी को क्या होता है, सुख देने से क्या होती है, खुशी होती है ना, सुख देने से क्या होता है, खुशी होती है ना। तो इसीलिए हर एक को क्या करना है, सुख देना है। जब हम सुख देंगे तो मां बाप का सो कर सकेंगे है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा, केवल बाबा बाबा या मम्मा कहना नहीं है, लेकिन उनके जैसा बनना है ना। क्योंकि यदि आप केवल बैठ करके याद भी करें बाबा को, तो केवल बैठने से याद नहीं आ जाएगा बाबा है ना। जैसे कई बार जानकी दादी भी कहती थी, कि बाबा मैं तो आपके पास हूं, मधुबन में हूं, फिर भी मुझे क्यों उदासी रहती है। बाबा ने क्या कहा, बच्ची आपकी स्थिति तो अच्छी है लेकिन आपके लौकिक घर वाले आपको याद कर रहे हैं इसलिए आपको उदासी, आपके पास उदासी आ रही। तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो कि हमें हमारे लौकिक वाले भी मोह बस याद ना करें। तो ये ध्यान रखना है, ये लौकिक वालों की गलती नहीं, इसका ध्यान हमें रखना है कि हमारी स्थिति कैसे बनाएं जो कोई हमें याद ना करे मोह बस, है ना। और इसीलिए बाबा ने कहा हर एक को सुख देना है, ये साधारण बात नहीं है। बाबा ने कहा आप सुख देंगे तो ही गद्दी नसीन बनेंगे, सुख नहीं देंगे ना गद्दी नसीन नहीं बनेंगे। बाबा ने इसीलिए कहा था, मैं समझता हूं एक महीने पहले ही मुरली में बाबा ने कहा बाबा बुद्धि का ताला खोलना चाहते हैं हर एक बच्चे का, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाबा भी चाहते हैं बुद्धि का ताला खोलने लेकिन खोल ही नहीं सकते। क्यों? बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो बाबा खोलना भी चाहे ना तो बहुत बच्चों का बुद्धि का ताला खोल नहीं सकते, है ना। तो इससे क्या साबित होता है, क्या प्रूव होता है कि कर्म इतना प्रबल है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आप कर्म करते हैं, जो पाप कर्म भी होते हैं, वास्तव में वो कभी माफ नहीं होता है, उसकी सजा भोगनी ही पड़ती है। तो इसलिए हर एक को सुख देना है कर्म, ऐसा नहीं है आपने किसी को दुख तो दे दिया और आके आप योग में बैठ गए। कर्मों का गुह्य रहस्य इतना है कि हम लोगों ने कई बार देखा कि बाबा आए हुए स्टेज पर और उसी समय किसी आत्मा के अंदर इविल सोल आ जाती है, उसको भगवान से वंचित कर देती है, भगवान से वंचित कर देती, अर्थात उसके कर्म ऐसे हैं, सोचिए। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कर्मों पर, इतना ध्यान हो कर्म के ऊपर, अदरवाइज है ना। तो इसलिए हमें इतना ध्यान देना, हर एक को सुख देना है। तो जितना हम सुख देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक्शन से, हमारे एक्टिविटी से कैसे दिखाई देंगे, हम किसकी याद आएगी, बाबा और मम्मा की, है ना। इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा, पावन दुनिया है ना, पतित दुनिया है ना, पुण्य की दुनिया और दुख की दुनिया। तो जब बाबा कहते हैं ना तो दिखाई दे पावन दुनिया कैसी है, पाप की दुनिया कैसी है, या पतित दुनिया कैसी है, दिखाई दे रहा है। पावन दुनिया कैसी होगी, वहां क्या नहीं होगा, देह अभिमान नहीं होगा, है ना। पाप की दुनिया में क्या होगा, देह अभिमान, है ना। इसीलिए बाबा ने आज भी कहा ना कि सबसे बड़ी ग्रहचारी क्या है, क्या है, देह अभिमान, है ना। तो जितना हम, है ना, देह अभिमानी रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, तो क्या होता है, ग्रहचारी तो लगती है स्वयं को, यज्ञ में भी बाबा ने क्या कहा, इससे विघ्न पड़ता है, है ना। तो किसमें विघ्न पड़ता है, यज्ञ किसका है, किसका यज्ञ है, तो हम किसके विघ्न रूप बन जाते हैं, तो भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, इसमें यदि हम विघ्न बनते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है कल्प कल्प के लिए, है ना। तो इसीलिए इस यज्ञ में हम विघ्न ना बने उसके लिए भी हमें क्या करना है, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। जितना जितना हम देही अभिमानी होंगे, जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, उतना उतना क्या होगा, क्या होगा, उतना खुशी रहेगी, है ना। बाबा ने कहा जब आप श्रीमत पर चलेंगे ना, श्रीमत पर चलेंगे अनेकों को सुख देंगे तो स्वतः खुशी रहेगी। और जब बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, तो भी क्या रहेगी, बाबा ने कहा तो भी क्या रहेगी, खुशी। और वो खुशी कैसे आएगी, तो बाबा ने कहा कि अब जितना अतींद्रिय सुख में रहेंगे ना, जितना अतींद्रिय सुख में रहेंगे उतना ही क्या होगी, खुशी होगी। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको मुरली की सारी पॉइंट्स याद हो जाए। आपको उस मुरली में कौन सी दो पॉइंट, दो या तीन पॉइंट आप ले लीजिए जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, और उस दो तीन पॉइंट का ही आप पूरे दिन में इंप्लीमेंट करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में लाइए, चलते फिरते खाते पीते उसी चिंतन, उसी पर आपका चिंतन चलता रहे, उसी पर आपका मंथन चलता रहे, है ना। तो क्या है, आप इससे क्या होगा, नशा चढ़ेगा निश्चय। तो जितना देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना ही हम निश्चय हमारा बढ़ेगा, और निश्चय जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, नशा, नशा बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि कई बच्चे बाबा बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं ना हाथ, क्यों, क्यों, बाबा कहते हैं लेकिन देही अभिमानी स्थिति नहीं है, है ना। तो जब देही अभिमानी स्थिति पर हमारा इतना ध्यान होना चाहिए, तो जब हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे तो क्या होगा, नशा चढ़ेगा, है ना, निश्चय, निश्चय और मजबूत होगा, और निश्चय जितना बढ़ेगा उतना नशा स्वतः हो जाएगा। तो इसलिए हमें जितना हो सके अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, अपने कर्म से हर एक को सुख देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जो बच्चे बहुतों को सुख देते हैं, है ना, एक है हम बाबा को याद करते हैं और बाबा कहते हैं मैं बच्चों को मैं क्यों याद करूं, कोई मुझे पाप खत्म करने हैं क्या, बाबा कहते हैं ना। लेकिन अभी हाल ही में बाबा ने कहा था साकार मुरली में कि जो बच्चे अनेकों को सुख देते हैं या इस यज्ञ में मदद करते हैं, तो बाबा ने कहा कि मैं स्वयं उन बच्चों को याद करता हूं, है ना। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि हम भी इतने स्वीट बने, इतने मीठे बन जाएं। इसीलिए बाबा ने कहा कि इतना हम बाबा मम्मा जैसे बन जाएं, है ना। तो बाबा खुद आपको लगेगा कि कोई खींच रहा है, लेकिन अगर आप किसी को दुख देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, है ना, तो आज दुनिया में आप देख रहे हैं बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, जीव घात भी कर लेते हैं, क्यों, क्यों कर लेते हैं जीव घात, मान की कमी है, है ना। उनको क्या लगता है हम कहां जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना, हम क्या मुंह दिखाएंगे, हर जगह लोग अपमानित करेंगे, तो इसे फेस नहीं कर पाते, इसलिए क्या कर लेते हैं, जीव घात भी कर लेते हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं, मान से क्या होता है, हमको मान आदि मिले ना मिले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, मान मिलने से बहुत फर्क पड़ जाता है ना, अपमान से। जहां अपमान ऐसा है कि जीवन से भी आदमी दूर भागना चाहता है, जीवन को भी छोड़ देना चाहता है, तो अपमान। और मान जब मिलता है तो है ना, तो बाबा ने इसलिए कहा ना कि ऊंची शान में है ना, हम अगर हम इस स्थिति में रहते हैं कि हम बाबा के नैनों के क्या हैं, नूर हैं, नैनों में हम समाये हुए हैं, नैनों में समाये हुए हैं अर्थात, नैनों में समाये हुए हैं अर्थात बाबा की आंखें हैं उसमें हैं हम, ऐसा फील करना है। नैनों में समाये हैं हम अर्थात कैसे देखेंगे, नैनों में समाये हुए हैं अर्थात हम ऐसे कर्म हैं हमारे, हमारी ऐसी स्थिति है कि हमें भगवान देखता है ना, जैसे बाबा हमें देखता है ना। किसी को हम कहते हैं ना आप तो मेरे नैनों में हैं, नैनों में हैं अर्थात हम उनके उनको इतने प्यार से देखते हैं, तो ऐसे बाबा जब हमें इतना प्यार से देखता है, हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ होते हैं, तो जैसे हम बाबा के नैनों में समा जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा जब आप इतनी ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं तो क्या होता है, परेशानियों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। परेशान होते ही तब है हम जब बाबा से अपनी उच्च है ना, जब बाबा के नैनों से हम उतर जाते हैं ना, तो परेशान तो होना ही है। आप बाबा की नजरों में समाये रहो, परेशानी से मुक्त रहेंगे। तो इसलिए इतना हमें ध्यान देना है इस बात पर कि हम बाबा के नैनों में समाये रहें, और बाबा के नैनों में समाएंगे केवल कहने से नहीं, हमारे कर्म ऐसे हों इतना हमारे को सुख दें।